दिन भर 6 दिसंबर दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदल। मरीना बीच में जयललिता का अंतिम संस्कार, लाखों लोगों का जन सैलाब उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुआ।
बहुत दुख है भाई, बहुत दुख है। गोवन भाई 3 रुपये 5 रुपये को 4 इडली देता, अम्मा उन्हें कैसा है मालूम, गरीब से गरीब खाता है, मौती भेजे, कुछ नहीं, दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है।
समाज के हर वर्ग से जयललिता को श्रद्धा सुमन। सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू बोले,
मैडम जयललिता जी डिमाइस इज अ बिग लॉस टू द कंट्री।
सलमान रावी बताएंगे किस तरह का माहौल है आदिवासी बहुल इलाके बस्तर में। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार तृप्ति श्रीवास्तव से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जय जयललिता को उनके गुरु एमजीआर की समाधि के पास दफन कर दिया गया। कल देर रात निधन के बाद आज उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए राजाजी हॉल में रखा गया था। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कांग्रेस महाध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई बड़े नेता पहुंचे। राजाजी हॉल से मरीन बीच तक की उनकी शव यात्रा में हजारों समर्थक शामिल हुए। जयललिता के दत्तक पुत्र सुधाकरण ने शशिकला की निगरानी में उनका अंतिम संस्कार किया। यूरोपीय यूनियन के लिए ब्रेक्सिट के मुख्य वार्ताकार मिशेल बार्नियाय ने कहा है कि ब्रिटेन को अक्टूबर 2018 तक ब्रेक्सिट समझौता करना होगा। ब्रसल्स में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि बातचीत के लिए समय बहुत कम है, क्योंकि प्रस्तावित समझौते को 2 साल की प्रक्रिया में मंजूर करना होगा। उन्होंने लोगों से गुहार करते हुए शांत रहने और बातचीत के लिए कहा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ब्रिटेन को चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग यूरोपीय यूनियन में नहीं है उन्हें इसमें शामिल देशों की तरह अधिक और फायदे नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा,
5 months ago, a majority of the British citizens voted to leave.
5 महीने पहले ब्रिटेन के बड़े हिस्से ने यूरोपीय यूनियन छोड़ने के लिए वोट किया था। अब हमें इस नई परिस्थिति से निपटने की जरूरत है और बाहर निकलने की एक सुनियोजित व्यवस्था करनी होगी। ये थे मिशेल बार्नियाय के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सऊदी अरब की अदालत ने ईरान के लिए जासूसी के आरोप में 15 लोगों को मौत की सजा सुनाई है और कई लोगों को जेल भेज दिया। सजा पाने वाले ये 30 से ज्यादा लोग हैं और लगभग सभी सऊदी अरब के अल्पसंख्यक शिया समुदाय से हैं। इन्हें 3 साल पहले हिरासत में लिया गया था और मुकदमे की सुनवाई इस साल फरवरी में शुरू हुई थी। इन लोगों पर सऊदी की आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाने और सांप्रदायिक संघर्ष भड़काने के लिए जासूसी घेरा तैयार करने के आरोप हैं। हालांकि हिरासत में लिए गए 2 लोग बेगुनाह साबित हुए हैं। रूस ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि सीरिया के अलेप्पो में हो रही हिंसा को खत्म करने की कोशिशों में वो अड़चन पैदा कर रहा है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव ने आरोप लगाया कि अमेरिकी समय की मांग करके विद्रोहियों पर से अलेप्पो के कब्जे वाले इलाके को छोड़ने का दबाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेवरोव ने कहा कि अमेरिका ने बुधवार को होने वाली बातचीत के निर्धारित समय से पीछे हट गया है। चरमपंथियों को अलेप्पो से बाहर निकालने की योजना इस अहम बातचीत का मुद्दा थी। विद्रोहियों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो अलेप्पो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता को अब से थोड़ी देर पहले पूरे राजकीय सम्मान के साथ दफना दिया गया। जयललिता की साथी रही शशिकला ने उनका अंतिम संस्कार किया। सोमवार रात 11:30 बजे निधन के बाद से ही उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए राजाजी हॉल में रखा गया था। यहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा कई जानी मानी हस्तियों और आम जनता ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। उनकी शव यात्रा में लाखों लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा और आंसुओं से भरी आंखों से जनता ने उन्हें अंतिम विदाई दी। आइए सीधे चलते हैं चेन्नई, जहां इस समय हमारे संवाददाता जुबैर अहमद मौजूद हैं। जुबैर, बताइए किस तरह हुआ जयललिता का अंतिम संस्कार?
देखिए, जब उनका शव राजाजी हॉल से निकाला जा रहा था तो उस वक्त इतने लोग वहां सड़क के बाहर जमा हो गए थे कि उनकी जो यात्रा है वो पूरी तरह से चल नहीं पा रही थी, गाड़ियां रुक गई थी, ट्रैफिक जाम हो गया था। बहरहाल जब पुलिस ने रास्ता थोड़ा साफ करने की कोशिश की तो काफिला आगे बढ़ा और 4:30 बजे उनका शव वहां पर आना था, लेकिन 5 बजे के बाद आया, 5:15 के आसपास। और शशिकला उस गाड़ी में बैठी थी जिनमें उनका शव था और उन्होंने अंतिम संस्कार दिया और उनको दफनाया गया है MGR के बिल्कुल बगल में, मरीना बीच में। और कहा यह जा रहा है कि वो बहुत सम्मान की बात है क्योंकि इससे पहले सिर्फ MGR और एक और मुख्यमंत्री, दो लोग वहां पर दफनाए गए हैं अब तक, और ये तीसरी जो है वो जयललिता है, तो उनके लिए बड़ी सम्मान की बात है। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद वो जो जगह कल तक तय नहीं हो पाई थी, लेकिन कल रात में जब कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया उसके बाद ही ये बात सामने आई कि उनको भी वहीं दफनाया जाएगा। तो वहां भी मरीना बीच में, जो बहुत ही खुली सी जगह है, आप अरब महासागर के बगल में, काफी जगह है वहां पर लोगों के आने की, और वहां पे भी लाखों लोग वहां पर उमट पड़े, जो राजा जी हॉल से वहां से आ रहे थे और शहर से बाहर से भी लोग आए हुए थे। जब जैसे लोगों को कल रात के बाद आज सुबह जब वो जागे होंगे उन्हें पता चला होगा कि जयललिता अब नहीं रही इस दुनिया में, तो वो लोग भी, हालांकि ट्रैफिक बंद था, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया गया था, लेकिन वो लोकल ट्रेनों से यहाँ आ रहे थे और मैं देख रहा था ट्रेनों से खचाखच भरे लोग चले आ रहे थे, तो वो भी वहां जमा हो गए थे। एक तरह से वन वे ट्रैफिक था, सभी लोग मरीना बीच की तरफ जा रहे थे। और जब कुछ लोगों से मैंने बात भी की तो उनका ये कहना था कि वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं, अंतिम संस्कार में वो शायद शामिल ना हो सके लेकिन वो करीब जाकर देख उनका एक बार चेहरा देखना चाहते हैं। इसी तरह से जब हॉल में भी उनका शव रखा हुआ था लोगों के दर्शन के लिए, तो लोग सिर्फ एक उनका एक बार चेहरा दीदार करना चाहते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वहां तक पहुंच भी नहीं पाए क्योंकि इतनी बड़ी भारी जनता वहां मौजूद थी, पुलिस का भी बहुत जबरदस्त इंतजाम था। तो जब उनका अंतिम संस्कार हुआ उसके बाद जब मरीना बीच से लोग वापस आने लगे, उस वक्त भी जबकि ट्रैफिक नहीं चल रही थी उसके बावजूद सिर्फ पैदल जो लोग जा रहे थे उसमें भी धक्का धुक्की, मुझे भी बहुत परेशानी हुई, बहुत मुश्किल से वहां से मैं निकल के आया। और अब जो है यहाँ रास्ता साफ हुआ है, लोग अपने घरों को जा चुके हैं, बहुत सारे लोग अभी भी वहां पर मौजूद हैं और वो इमोशनल से दिख रहे थे, कुछ लोग जो वहां अंतिम संस्कार के समय में रोने भी लगे। तो इस तरह से एक उनको बहुत बड़ा झटका लगा, हालांकि ये अंदाजा हो गया था कि उनकी तबीयत इतनी खराब है कि बचना उनका मुश्किल है, हार्ट अटैक हो चुका था कल, लेकिन फिर भी उनको उम्मीद थी कि शायद वो किसी तरह से पुल थ्रू कर जाए, वो संभल जाए और उनकी सेहत वापस ठीक ठाक हो जाए। लेकिन जब वो उनके निधन का जब ऐलान किया गया तो हॉस्पिटल में भी हम लोग जब गए थे 12 बजे रात कल, तो वहां भी काफी बड़ी संख्या में जनता मौजूद थी और वो बहुत डिसिप्लिन थे और बहुत ही पीसफुल तरीके से शांतिपूर्वक वहां पर खड़े हुए सिर्फ ये कह रहे थे कि हमें एक बार देखना है, हालांकि वो अब जिंदा नहीं है लेकिन हमें देखना है। तो जाहिर है वो हॉस्पिटल के अंदर नहीं जा सकते थे। जब उनका वहां से वन काफिला निकला तो वो एक तरह से नारेबाजी करने लगे कि अमर रहे जयललिता, इस तरह से। तो अपने इसका इजहार किया उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन हिंसक वारदात नहीं हुई जिसकी आशंका हमें हो रही थी कि शायद कुछ लोग आत्मदाह भी कर सकते हैं, कुछ लोग जो है वो पथराव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हमें कहीं पर देखने को मिला। बिल्कुल शांतिपूर्वक लोग सड़कों के दोनों तरफ लोग इकट्ठा होके खड़े होके इस बात का इंतजार कर रहे थे जब काफिला उधर से गुजरेगा तो वो कम से कम वो श्रद्धांजलि अपनी दे सकते हैं।
जुबैर, तमिलनाडु का आम जनमानस है वो इस इतनी बड़ी ट्रेजेडी को किस तरह से ले रहा है? आपने जिक्र किया कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, हालांकि तमिलनाडु के लोग भावनाओं का प्रदर्शन करने के लिए मशहूर हैं, लेकिन लगता है कि इस मामले में वो ज़्यादा भावनाओं का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा?
मेरा तो तजुर्बा ये था कि लोग ये मान चुके थे कि वो 75-74 दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं और तबीयत काफी खराब है, शायद उनका बचना मुश्किल ना हो, तो एक अचानक से जो झटका लगता है किसी के मरने का वैसा नहीं था उनके साथ। उनको अंदाजा हो चुका था कि उनकी तबीयत शायद संभल ना पाए और वो शायद उनका बचना मुश्किल हो, तो वो एक जो सडन झटका होता है वो नहीं उनके साथ उनको सामना करना पड़ा। तो एक तरह से उन्होंने मन बना लिया था कि शायद इनका बचना मुश्किल हो, इसीलिए कोई आत्मदाह करने के लिए नहीं सामने आया, पथराव करने के लिए अस्पताल के बाहर ऐसे लोग नहीं आए। ये जरूर मैं कहूंगा कि लोगों ने इसको अपना पर्सनल ट्रेजेडी जो है उस तरह से देखा है। उन सब कई लोगों से मैंने बात की तो उनका कहना था कि हमारी अम्मा नहीं रही, मेरी माँ नहीं रही, वो हमारी माँ थी। हालांकि उनकी उम्र भी जयललिता 68 साल की थी, उनकी उम्र भी 50 55 60 साल की हो रही होगी जो लोग ऐसा कह रहे थे, लेकिन उनका यही कहना था कि हमारी अम्मा अब नहीं रही, अब तो हमारा कोई नहीं रहा। और वो एक तरह से कह सकते हैं कि जेन्युइन जो एक दुख है उसका इजहार कर रहे थे। और एक जैसे कि एक आदमी से मैं मिला कल रात में अस्पताल के बाहर, उसने कहा कि उसके 9 महीने की गर्भवती बीवी है, उसको वो छोड़ के आया, उसके पेट में दर्द भी हो रहा था, उसने खुद कहा ऐसा, अपनी बहन के साथ उसको छोड़ के आया। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि एक बार दीदार हो जाए किसी तरीके से, क्योंकि 75 दिनों से उसने कहा कि टेलीविजन पे या कहीं भी अम्मा का उसने चेहरा नहीं देखा था, इसलिए वो आकर वहां खड़ा होता है। इस तरह से एक और सज्जन से मैं मिला, उसका कहना था कि जब उसके बच्चे का जन्म हुआ हाल में, तो उसके बच्चे की जो अस्पताल की भी खर्च वगैरह था वो अम्मा की हुकूमत ने उसको दिया, इसलिए वो भी पर्सनल ट्रेजेडी उसको समझ के यहाँ श्रद्धांजलि देने आया था।
बहुत बहुत धन्यवाद जुबैर आपका चेन्नई से। आज जुबैर अहमद दिन भर पहले राजाजी हॉल में रहे, जहां जयललिता के पार्थिव शरीर को लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। ये वही जगह थी जहां जयललिता ने खुद अपने नेता एमजीआर को 29 साल पहले भावभीनी विदाई दी थी। शाम को जैसा कि आपने सुना, जुबैर अहमद मरीना बीच पर थे जहां जयललिता को दफनाया गया। इन दोनों जगहों पर उन्होंने आम लोगों से बात की, आइए सुनते हैं।
इस वक्त हजारों की संख्या में लोग अंदर आए हुए हैं और एक दूसरे को धक्का देके जाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका आखिरी बार दीदार हो जाए, उनका चेहरा दिख जाए। और लेकिन यहाँ से हम अंदर नहीं जा पाएंगे इससे ज़्यादा। और प्रेस प्रेस का थैंक यू। हाँ
PBC
हाँ,
अंदर जाओ।
थैंक यू। देख सकते हैं सब यहाँ से हमारे सामने है, बिल्कुल बहुत सारे कार्यकर्ताओं से घिरा हुआ है उनका शव। कम से कम 150-200 के करीब सफ़ेद शर्ट और लुंगी में तो उनके कार्यकर्ता यहाँ पर आकर वो हिफाजत कर रहे हैं बॉडी की। लोगों में बेचैनी बहुत है, लोग उत्तेजित हो रहे हैं और वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वो तस्वीरें भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। दिक्कत इसीलिए आ रही है, लोग एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम बताइए। नेम
आनंद।
आनंद, आप तमिल हो? अच्छा, तो आप यहाँ खड़े हो?
नहीं।
अच्छा, आप यहाँ कब से खड़े हैं?
इतना खुद खड़ा, आज 12 को बहुत टायर्ड हो गया, जाके फिर आके इधर खड़ा हूँ।
अम्मा आप नहीं रहे?
हाँ।
आपके लिए क्या?
बहुत दुख है भाई, बहुत दुख है। कौन भाई 3 रुपये 5 रुपये को 4 इडली देता अम्मा, उन्हें कैसा है मालूम, गरीब से गरीब खाता है, मौत ही भेजे, कुछ नहीं, दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है।
तो आखिरकार जयललिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया और यहाँ पे उन्हें दफनाया गया है, जैसा कि एमजीआर को किया गया था। और उन्हीं के जो जहाँ पे उन्हें दफनाया गया था उसके बिल्कुल बगल में इन्हें भी दफनाया गया है। यहाँ पर अब लोगों की संख्या कम होती जा रही है।
ये थे चेन्नई से जुबैर अहमद। संस्कृत में जयललिता के नाम का मतलब होता है ऐसा इंसान जो हंसते खेलते विजेता बन जाता है। अपने स्वभाव के अनुसार अपने अंतिम दिनों में भी वो अपोलो अस्पताल के बिस्तर से सभी को असमंजस में डाले हुई थी। मरने से पहले अंतिम सांस तक उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने अपने द्वारा उठाए गए हर राजनीतिक कदम में स्थापित संकीर्ण सोच की उपेक्षा की। मैंने वरिष्ठ पत्रकार कल्याणी शंकर से संपर्क किया और पूछा कि जयललिता को भारतीय राजनीति में किस तरह से याद किया जाएगा।
वो तो ये देखिए, वो फिल्म स्टार पहले थी, उसके बाद पॉलिटिक्स में आई, फिर उसके बाद अपना स्थान फिल्म वर्ल्ड में भी बनाया, फिर पॉलिटिक्स में भी बना दिया। आज का आप देखेंगे तो राइट नाउ मैं सभी देख रही हूँ टीवी में भी, उनका जो लास्ट राइट्स के लिए कितने लोग आए हुए हैं, सी ऑफ ह्यूमैनिटी, इतने लोग आए हुए हैं। इसमें उनका एक स्थान तमिलनाडु में, इतने बड़े बड़े लीडर्स होते थे, 5-6 लीडर्स होते थे, वो राजा जी होते थे, फिर कामराज, फिर अन्नादुरई, फिर MGR, फिर अभी इनका भी उसी लीग पर ये आगे 2-3 डिकेड में, तो इसलिए उसका स्थान अपने आप तो उसका लाइफ में भी हाई लो बहुत हुआ था। कभी लोग उनसे छिड़ते थे, कभी उनको नीचा करते थे, कभी उनसे झगड़ा करते थे, वो सब के बाद भी उसका ये क्वालिटी ये था कि वो फाइट करके वापस आ रही थी, इसलिए उसका ये बहुत अच्छे गुण है और शी इज वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स।
वर्तमान पॉलिटिक्स में, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में तीन मैवरिक महिला पॉलिटिशियंस का नाम लिया जाता है, ममता बनर्जी, मायावती और उनके साथ जयललिता का भी नाम लिया जाता था। अगर आपसे कहा जाए इनको कंपेयर करें इन दो महिला नेताओं से, तो आप किस तरह से करेंगी?
ये देखिए, तीनों महिला नेताओं को आप लिया तो इनमें से ममता जी थोड़ा अलग है, क्योंकि वो ममता जी का कोई मेंटर नहीं था, वो अपने आप फाइट करके ऊपर आई, उसका कोई, लेकिन ममता सॉरी मायावती और जयललिता को तो, जयललिता तो MGR मेंटर था और मायावती को तो कंशीराम था, इस वजह से उन तीनों का थोड़ा अलग अलग है। लेकिन ऑल दो तीनों भी स्ट्रीट फाइटर्स हैं, वो ग्रास रूट पॉलिटिशियंस हैं, उनका अपना पर्सनैलिटी कल्ट बनाया, तीनों का ये सब सिमिलैरिटीज बहुत है, तो और अपना अपना स्टेट में वो अपना फीफडम बना के वो रहे हैं, तो इस वजह से तीनों का गुण, मैं ये बोल रही हूँ कि पर्सनालिटी कल तीनों ने बनवाया, इस वजह से उनका अपना स्थान भी ग्रहण किया।
जयललिता का अगर सिंगल मोस्ट सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जाए तो आपकी नजर में वो क्या होगा?
देखिए, जयललिता का ऊपर कितना करप्शन चार्जेस थे, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस थे, और एक नहीं बहुत सारे केसेस थे, वो सबको जीत के वो फिर दोबारा उसके बाद 1996 में उसका बहुत केसेस लगवाया गया था, उसके बाद उन्होंने 2001 में वापस आया, फिर 2011 में वापस आया, फिर 2016 में उससे ज्यादा नंबर लेके वापस आई, तो इसलिए मैं इनको ये बहुत महत्वपूर्ण समझ रही हूँ।
लेकिन कल्याणी जी, आप मानेंगी कि AIDMK में कोई दूसरे स्तर की लीडरशिप नहीं है, अब आपको क्या लगता है कुछ मामला आगे बढ़ेगा या पार्टी टूट भी सकती है?
देखिए, अभी के लिए पार्टी मुझे नहीं लग रहा है कि टूटेगी, क्योंकि सबका पावर का है और बड़ा पार्टी भी उभर के आई है और स्टेबिलिटी है एज ऑफ नाउ, लेकिन आगे एक दो साल में क्या होगा हम बोल नहीं सकते, क्योंकि इससे बहुत बड़ा पार्टी था NT Rama Rao, वो रहते भी पार्टी स्प्लिट होगी, तो इस वजह से पॉलिटिक्स में कुछ इतना आगे देख के बोल नहीं सकते हैं। इनका पार्टी अभी पन्नीर सेल्वम अभी चीफ मिनिस्टर बना गया, वो शशिकला का नजदीक पहले था, फिर बीच में टूट गया, फिर अभी फिर से वो उसका सपोर्ट के साथ ही आया है, और शशिकला का वो पपट बनेगा, शशिकला का पपट नहीं बनेगा तो वो BJP का सेंटर में जो भी मोदी गवर्नमेंट का है उनका पपट बनेगा, ये दोनों का थ्रू ही वो तमिलनाडु अभी आगे जाएगी।
ये थी वरिष्ठ पत्रकार कल्याणी शंकर।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 7,600, 9,510, 11,995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। जयललिता के निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत राजनीतिक जगत के तमाम दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। फिल्म जगत के भी कई सितारों ने उनकी शख्सियत को याद किया और श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जयललिता को याद करते हुए कहा कि वो हमेशा से एक योद्धा थीं और जीवन के अंतिम पलों में भी उनका यही जज्बा कायम रहा। अमर शर्मा की रिपोर्ट।
जयललिता के निधन पर केंद्र सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है, जहां देश भर की सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के निधन पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा,
जब वे राज्यसभा की सदस्य थीं तब मैं सदन का नेता था और ये करीब 1983 की बात है। मेरी उनसे कई बार बातचीत हुई, प्रशासन के मुद्दों समेत तथ्यों और आंकड़ों पर उनकी बेहतरीन पकड़ थी। वो हमेशा से एक योद्धा थीं और जीवन के अंतिम पलों में भी उनका यही जज्बा कायम रहा। आखिरी समय तक वे बीमारी की क्रूरता से लड़ती रहीं। उन्होंने सभी लड़ाई जीती, लेकिन शायद सभी को एक लड़ाई हारनी पड़ती है और वो हार गईं। मैं उन्हें अपनी सम्मानजनक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के शब्द। लोकसभा में स्पीकर सुमित्रा महाजन समेत तमाम सांसदों ने मौन रखकर जयललिता को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जयललिता को श्रद्धांजलि देने के बाद लोकसभा और राज्यसभा पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा,
मैडम जयललिता जी डिमाइस इज अ बिग लॉस टू द कंट्री।
जयललिता का निधन देश के लिए बहुत बड़ी आपदा है। वे एक कुशल प्रशासक थीं, उनमें दृढ़ विश्वास और साहस था। उन्होंने प्रशासन में बहुत सारे सुधारों की शुरुआत की थी और गरीबों के लिए भी बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की थीं। यही वजह है कि तमिलनाडु के लोग प्यार से उन्हें अम्मा कहकर बुलाते थे। वेंकैया नायडू के शब्द। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी दिवंगत नेता की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा,
स्ट्रांग बोल्ड एफिशिएंट ऐसा एक लीडर, ये तो बिग लॉस है।
वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू यादव ने कहा,
बहुत साहसिक बहुत बहादुर वो नेता थे और उन्होंने तमिलनाडु की जनता का बहुत सेवा किया है।
ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल पार्टी के मुखिया नवीन पटनायक ने जयललिता को याद करते हुए अपनी भावना कुछ यूं प्रकट की, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री सेल्वी जय जयललिता के निधन से मुझे बहुत गहरा धक्का लगा है। वे जनता की नेता थीं, उन्होंने विकास और कल्याण के लिए बहुत योगदान दिया। नवीन पटनायक के शब्द। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा,
शी वॉज द पीपल्स चीफ मिनिस्टर, यानी जो जिसको लोग बहुत ही प्यार से खुलूस से अम्मा बुलाते थे। और मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क के सियासी अमल में इतने बड़े लीडर का, इतनी मेरे ख्याल में कोई ज्यादा उम्र नहीं थी उनकी, इस तरह चले जाना मुझे लगता है हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान है।
फिल्मी जगत भी जयललिता को याद कर रहा है। जयललिता की पहली हिंदी फिल्म में उनके सह अभिनेता रहे धर्मेंद्र ने जयललिता को याद कर कहा,
वो मेरी को स्टार थी फिल्म इज्जत में, मेरे साथ थी और करीब 1.5 महीना हम लोग वहाँ रहे कुल्लू मनाली में, तो हर लम्हा एक खूबसूरत लम्हा था। वो यादें गुजरने के बाद एक फिल्म की तरह आंखों के सामने घूम गई मेरे, और वो उनकी मदर भी थी, खाना वाना बनाया करती थी। हम सब मिलके अब दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा को सुकून मिले, शांति मिले।
तमिलनाडु में स्कूल और कॉलेज 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं और 6 दिसंबर से 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है।
जयललिता को श्रद्धांजलि।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
आइए अब कुछ और विषयों पर नजर दौड़ाई जाए। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बस्तर के इलाके में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। यह इलाका कई दशकों से माओवादी छापामारों और सरकार के बीच चल रहे संघर्ष का मुख्य केंद्र बना हुआ है। ये वो इलाका है जहां सरकार पर आरोप लगते रहे हैं कि उसने हथियारबंद निजी गुटों को प्रोत्साहित किया है। बस्तर के सुदूर अंचल में रहने वाले आदिवासी इस संघर्ष में पिस रहे हैं। हाल ही में इस तरह के निजी गुटों और विशेष पुलिस अधिकारियों यानी एसपीओ के निशाने पर सामाजिक कार्यकर्ता आ गए हैं, जो अब स्वतंत्र रूप से इस इलाके में नहीं जा सकते हैं। बीबीसी संवाददाता सलमान रवि ने ऐसे माहौल में बस्तर का दौरा किया। पेश है उनकी रिपोर्टों की श्रृंखला की पहली कड़ी।
दूर दूर तक सड़क पर किसी इंसान का नामो निशान नहीं है, गाड़ियां भी नदारद हैं। जंगल के बीचों बीच से गुजरती हुई ये सड़क कभी इतनी वीरान नहीं हुआ करती थी। सुकमा से कोंटा जाने वाली सड़क पर खौफ साफ झलक रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर के हर ग्रामीण इलाके में कमोबेश यही आलम है, जहां किसी भी अनहोनी का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। मगर आज सन्नाटा कुछ अलग कारणों से है। पास ही में स्थित ओडिशा के मलकानगिरी में आंध्र प्रदेश पुलिस के विशेष दल ग्रे हाउंड ने 28 माओवादियों को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया है, जिसके विरोध में इस भूमिगत संगठन ने पूरे इलाके में बंद का आह्वान किया है। वैसे ये सब कुछ सिर्फ माओवादियों के प्रतिबंध तक ही सीमित नहीं है, यहाँ हर कदम पर प्रतिबंधों का साया है। प्रतिबंध तो यहाँ पिछले कुछ महीनों में बने विजिलांटे गुट यानी कानून के स्वयंभू रक्षक होने का दावा करने वाले गुटों ने भी ले रखा है। बस्तर में बाहर से आने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार इनके निशाने पर ज्यादा है। इसी तरह के गुट एक्शन ग्रुप फॉर नेशनल इंटेग्रिटी यानी अग्नि के फारूक अली का आरोप है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं और बाहर से आने वाले पत्रकार माओवादियों का समर्थन करते हैं।
जो दिल्ली से आके जिस तरह से नंदिनी सुंदर हो गई, ये बेला भाटिया जो आके यहाँ पे राजनीति करती है आदिवासियों पे, जो राजनीतिक लोग हैं जो सिर्फ आदिवासियों को मुद्दा बनाना चाहते हैं, उनका हित नहीं देखना चाहते, तो हम लोगों ने सोचा कि ये इनके खिलाफ मुहिम एक चलाया जाए तो जनता का भी कुछ फर्ज बनता है।
क्योंकि लेकिन लोकतंत्र में ये कितना जायज है कि कोई सामाजिक कार्यकर्ता अगर अपनी बात रखने के लिए आ रहा है तो उस पर हमला कर दिया जाए, उसकी हूटिंग की जाए या उसको भगा दिया जाए?
नहीं, हमने विरोध जताया।
मगर हथियारबंद गुट सलवा जुडूम के अगुवा महेंद्र कर्मा के पुत्र और कांग्रेस के नेता छविंद्र कर्मा का आरोप है कि नक्सल विरोधी अभियान सिर्फ एक दिखावा है।
जब तक किसी भी बड़े संगठन के खिलाफ में जनता इन्वॉल्व ना हो, वो आंदोलन कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता। हमारे सलवा जुड़ूम आंदोलन के बाद से लगातार सिर्फ फोर्सेस ही लड़ रही है, बाकी डिपार्टमेंट्स या जनता इस मामले में साइलेंट है। नक्सलियों के खिलाफ में अगर ये आंदोलन की बात कर रहे हैं, कुछ छोटे छोटे संगठन बना के लड़ने की जो बात कर रहे हैं, ये सिर्फ पैसा उगाही के अलावा कुछ नहीं।
इस साल सितंबर माह में बस्तर जिले के बुड़गुम के जंगलों के पास दो छात्रों की मुठभेड़ में हुई मौत भी पुलिस के लिए गले की हड्डी बन गई है। गांव वालों का आरोप है कि सोनाकू और बिजनो नाम के ये दो लड़के परिवार में हुई किसी की मौत की सूचना देने दंतेवाड़ा के बारसूर के इलाके से बुड़गुम आए थे। मामला छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, मगर बुड़गुम के उप सरपंच बुमरा राम मंडावी से मेरी मुलाकात उस जगह हुई जहां पुलिस ने दोनों छात्रों को माओवादी होने के शक में मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया था।
रिश्ता में ऐसी है नहीं, हम कोई खत्म होते तो खबर जाते हैं सर, ऐसे उन लोग भी अपना रिश्तेदार में गए थे, खबर बताने गए तो शाम के समय आए तो सुबह आप लोग जाओगे बोल के वहाँ रुक आए थे, तो उन लोग घर में सोए थे, वहाँ से उठा के ला के वहाँ मारे ऐसा करके बोल रहे थे, तो नक्सली भी आते हैं सर। सर हम लोगों को तो दोनों साइड से परेशानी लगा सर, तो नक्सली भी अमीलों को मारते हैं, पुलिस भी अमीलों को, ये थोड़ा सा हम लोगों को भी सोच में अलग लगा।
मैं उप सरपंच मंडावी से बात कर ही रहा था कि तब तक पुलिस वालों ने मुझे रोका और कहा कि मुझे पहले थाना आना चाहिए।
थोड़ा से आप लोग ऐसा आते हैं ना, इधर आते हैं ना, स्टेशन आइए हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन, उसके बाद जो भी कार्रवाई करना है, जो भी जहाँ जाना है।
मगर इसी बीच वर्ष 2011 में अविभाजित दंतेवाड़ा जिले के ताड़मेटला के इलाके में हुई एक घटना ने भी पुलिस की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इस घटना में जंगल में रह रहे 252 आदिवासियों के घरों में पुलिस द्वारा आगजनी किए जाने का आरोप है। शुरू में इस घटना को माओवादियों के सिर पर डाला गया, मगर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी, जिसमें स्थानीय पुलिस बल और विशेष पुलिस अधिकारियों पर घटना को अंजाम देने की बात कही गई। मामला इसलिए भी तुल पकड़ रहा है क्योंकि बस्तर के पुलिस महानिरीक्षक शिवराम प्रसाद कल्लूरी उस वक्त दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक थे। दोनों ही मामलों में पुलिस कटघरे में है और जानकारों को लगता है कि शायद यही कारण है कि बस्तर में जो कुछ चल रहा है उससे उन लोगों को दूर रखा जाए जो हकीकत सामने ला सकते हैं। सलमान रावी, बीबीसी बस्तर।
और चलते चलते खेल समाचारों में बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को दूसरे एक दिवसीय मैच में 116 रनों से हरा दिया है और इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ एक दिवसीय और 2020 टीम की घोषणा कर दी है। सभा की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जय जयललिता को उनके गुरु एमजीआर की समाधि के पास दफन कर दिया गया। कल देर रात उनका निधन हो गया था। जयललिता की दोस्त शशिकला ने उनका अंतिम संस्कार किया। यूरोपीय यूनियन के लिए ब्रेक्जिट के मुख्य वार्ताकार मिशेल बार्नियर ने कहा है कि ब्रिटेन को अक्टूबर 2018 तक ब्रेक्जिट समझौता करना होगा। सऊदी अरब की अदालत ने ईरान के लिए जासूसी के आरोप में 15 लोगों को मौत की सजा सुनाई है और कई लोगों को जेल भेज दिया। रूस ने अमरीका पर आरोप लगाया है कि सीरिया के अलप्पो में हो रही हिंसा को खत्म करने की कोशिशों में वो अड़चने पैदा कर रहा है। अमरीका समय की मांग कर विद्रोहियों पर से अलप्पो के कब्जे वाले इलाके को छोड़ने का दबाव कम करने की कोशिश कर रहा है। अफगानी अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने राजधानी काबुल के बाहरी इलाके से 60 टन से ज्यादा नशीली ड्रग्स जब्त की है, इसमें हशिश और गांजा शामिल हैं। फिलीपींस के जांचकर्ताओं के मुताबिक ड्रग्स से जुड़े अपराध के आरोपी मेयर रोनाल्डो एस्पिनोसा की पुलिस ने हत्या की है। एस्पिनोसा को की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।